भागवत सार की श्रृंखला में 11वें स्कंद के 10वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। इसके पहले श्लोक को दोहराएंगे, कृपया आप सब दोहराइए। श्री भगवान वाच मयोदितेश्व वहित स्वधर्मेषु मदाश्रयः वर्णाश्रमकुलाचारम् कामात्मा समाचरे। श्री भगवान उवाच, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, मया मेरे द्वारा उदितेषु कहा गया अवहितः अत्यंत सावधानी से स्वधर्मेषु श्री भगवान की भक्ति के कार्यों में मदाश्रयः मेरे शरणागत वर्णाश्रम वैदिक वर्णाश्रम प्रणाली कुल समाज के आचारम आचरण अकाम भौतिक इच्छाओं से रहित आत्मा ऐसा पुरुष समाचरेत अभ्यास करे। इसका अनुवाद इस प्रकार से है, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ने कहा, पूर्णतया मेरी शरण में आकर तथा मेरे द्वारा वर्णित भगवत भक्ति में अपने मन को सावधानी से एकाग्र करके मनुष्य को निष्काम भाव से रहना चाहिए तथा वर्णाश्रम प्रणाली का अभ्यास करना चाहिए। ओम ज्ञान तिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वंदेहं श्रीगुरौ श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमाओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। तो ये 10वां अध्याय है 11वें स्कंद का, जिसका शीर्षक है सकाम कर्मों के स्वभाव, किस प्रकार होते हैं सकाम कर्म। तो ये जो अध्याय है इसमें मूलतः दो भाग हैं। पहले से 13वें श्लोक तक भगवान वर्णन करते हैं कि कैसे हमें बंधन से मुक्त होना है, इस जगत में बंधन है, बंधन से मुक्त होना। और दूसरा विभाग जहां 14वें श्लोक से लेकर प्रायः 34वें श्लोक तक वर्णन किया जा रहा है कि किस प्रकार एक बहुत प्रसिद्ध सिद्धांत है जहां लोग कहते हैं कि कर्म से ही सब कुछ होता है, कर्म ही पूजा है, या इसको छह दर्शनों में से एक दर्शन कर्म मीमांसा के रूप में प्रस्तुत किया जाता है, या पूर्व मीमांसा भी कहते हैं। तो कर्म ये जैमिनी के द्वारा दिया गया, जहां कहा जाता है कि कर्म ही सब कुछ है, आप कर्म करो सब अच्छा रहेगा। इस बात को भगवान ने थोड़ा बहुत दामोदर लीला गोवर्धन लीला में कहा था। जब गोवर्धन लीला कही थी भगवान ने, तो जब वो रोक रहे थे नंद महाराज को कि यज्ञ नहीं करना है, तो इस सिद्धांत को थोड़ा सा उन्होंने कहा था। और अब उस सिद्धांत का खंडन करेंगे भगवान कि ये सही नहीं है। तो ये 34वें श्लोक तक होगा और 35 से लेकर 37 श्लोक तक आखिरी जो तीन श्लोक हैं उद्धव जी प्रश्न करेंगे। बहुत सुंदर उनके प्रश्न, ये सुनने के बाद उनके मन में प्रश्न आया। हमने याद रखना चाहिए कि हम लोग उद्धव गीता सुन रहे हैं, तो जैसे गीता में अर्जुन कुछ सुनते थे, उनके मन में प्रश्न आता था, वो प्रश्न करते थे, ऐसे ही उद्धव जी प्रश्न करेंगे और फिर उसके उत्तर में अगला अध्याय भगवान कहेंगे। तो ऐसे ये अध्याय है। इसको चर्चा करने से पहले सनातन गोस्वामी की प्रार्थनाओं को हम सब दोहराएंगे। सर्वशास्त्राभिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवतः प्राण श्रीमद्भागवतः प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते। मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते। असाधु साधु तदाइन अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्माम प्रेमना हृत्कंठयो स्फुरा। So, भगवान प्रारंभ कर रहे हैं बोलना। पिछले अध्याय में अवधूत की कथा के द्वारा सुना था कि कैसे गुण होने चाहिए हमारे अंदर, और अब उसको सुनाने के बाद भगवान ये बता रहे हैं इस अध्याय में कि उन गुणों को कैसे उत्पन्न करना है। तो क्या गुण होने चाहिए वो बताए, अलग अलग गुरुओं से सीखा, 24 गुरुओं से, या कहना चाहिए 25 गुरु से, अपने शरीर से भी सीखा। और फिर अब भगवान बता रहे हैं कि वो सारे गुण कैसे आने चाहिए हमारे अंदर। तो प्रारंभ कर रहे हैं भगवान कि व्यक्ति को वर्णाश्रम धर्म का पालन करना चाहिए, अर्थात अपने कर्तव्यों को करना चाहिए जहां है जिस अवस्था में है। ये वर्णाश्रम आज के समय में भी है। प्रभुपाद समझाते हैं कि कोई क्षत्रिय है, कोई सेना में है, कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई लेबर क्लास है, अपना कार्य कर रहे हैं, कामगार हैं, तो ये सब अभी भी चल रहा है। हाँ, उस तरह से नहीं जिस तरह से होना चाहिए। तो ये भगवान कह रहे वर्णाश्रम का पालन करना है, लेकिन किस तरह से, बड़ी महत्वपूर्ण बात कहते हैं भगवान, जो हम लोगों ने अभी पढ़ा कि हमें तीन चीजें भगवान कहते हैं साथ वर्णाश्रम पालन करने के लिए। पहला मद आश्रय, मेरी शरण लेना चाहिए। दूसरा मन मुझ में लगा होना चाहिए, पूर्ण रूप से भक्ति में लगा होना चाहिए। और तीसरा कोई भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। तो चाहे हम वर्णाश्रम पालन करें या कोई भी कर्तव्य करें, ये तीन चीजें आवश्यक हैं अगर हम भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं। भगवान का आश्रय लिए बिना हम दूसरों पर आश्रित रहते हैं, या अन्य स्थितियों पर, व्यक्तियों पर, या मान लीजिए व्यक्ति धन पर, अपनी पावर पर, अपनी क्षमता पर आश्रित रहता है। कलयुग का एक लक्षण है, कलयुग का लक्षण है कि लोग भगवान का आश्रय नहीं लेते हैं, किसी शक्तिशाली व्यक्ति का आश्रय लेते हैं। जीवन में कष्ट आता है तो पॉलिटिशियंस के पास भागते हैं या बड़े व्यक्ति के पास भागते हैं, ये कलयुग का लक्षण है। तो भगवान कह रहे हैं कि सबसे पहले अगर गुण उत्पन्न करने हैं, अच्छे गुण, क्योंकि गुण कहाँ से आते हैं? भक्ति से। यस्यास्ति भक्तिर् भगवत यकिंचन सर्वे गुणस्तत्र समासते सुरः। तो इसे सबसे पहले भगवान को समर्पण, भगवान का आश्रय लेना बहुत जरूरी है। और कैसे लेना है? पूर्ण रूप से मन भगवान में लगाना। और उससे क्या होगा? इच्छाएं कहाँ उत्पन्न होती हैं? मन में। तो भौतिक इच्छाएं चली जाएंगी। तो इस तरह से भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई भी कर्तव्य कर रहे हैं तो इस प्रकार से करना चाहिए। तो फिर मन में प्रश्न आता है, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इच्छा चली जाए, बहुत सारी इच्छाएं हैं। तो भगवान आगे बता रहे हैं कि कैसे इच्छाओं को दूर करना है। सो पहला उन्होंने बता दिया कि गुण कैसे उत्पन्न करने हैं, भक्ति कीजिए, इच्छा मत रखिए। तो मान लीजिए प्रश्न किया उद्धव ने कि अरे कैसे इच्छा ना हो, इच्छा तो होगी ही। तो फिर भगवान अब उसका तरीका बताते हैं। तो क्या बताते हैं कि कैसे हृदय से भौतिक इच्छा जा सकती है? तो कहते हैं कि बुद्धिमान व्यक्ति को देखना चाहिए कि हम जो भी प्रयास करते हैं भौतिक जगत में, अंत उसका विफलता में होता है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी बना लीजिए, कुछ प्राप्त कर लीजिए, अंत में कष्ट ही देता है। जैसे शरीर है, जब तक शरीर है चलिए ठीक है, आप कुछ आनंद ले सकते हैं, उसके बाद शरीर भी समाप्त हो जाता है और शरीर को छोड़ना बहुत कष्टदायक है। तो हर चीज का, हर भौतिक चीज का अंत कष्टदायक होता है। भगवद गीता में भी भगवान यही बताते हैं कि ऐसी चीजें जो रजोगुण में का वर्णन करते हैं कि प्रारंभ में बड़ी अच्छी लगती है लेकिन अंत में कष्ट देती हैं। और फिर इन चीजों के प्रति हम भागते रहते हैं, इनका अंत है। भगवान कहते हैं भगवद गीता में, यही संस्पर्श जब होगा दुख योनय एवते आद्यंत वंत कौंतेय नतेषु रमते बुधा। तो देखिए भगवद गीता में जो ज्ञान दिया है वही उद्धव को भी दे रहे हैं, एक थोड़ा अलग तरीके से, विस्तार से। जैसे भगवद गीता में भगवान ने विग्रह सेवा का वर्णन नहीं किया विस्तार से, एक श्लोक में कह दिया, एक दो श्लोकों में कहीं कहीं कह दिया, बहुत सारी जगह कहा है ऐसा नहीं है, लेकिन सीधे नहीं कहा। जैसे मान लीजिए पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, डीटी वर्शिप का वर्णन है विग्रह सेवा का, मनमना भव मद भक्तो मद्याजी, विग्रह सेवा का वर्णन है। तो ऐसा नहीं कि भगवान ने बड़ा वर्णन नहीं किया, स्पष्ट नहीं किया उसको। तो उद्धव जी को पूरा स्पष्ट करेंगे उसी गीता को। तो यहां भगवान यही कह रहे हैं कि जानना चाहिए, तो यही संस्पर्श जाप होगा। हम लोग जो आनंद लेते हैं स्पर्श के कारण, किसी स्त्री को स्पर्श करना, कोई मुलायम चीज को स्पर्श करना, इंद्रियों का स्पर्श होना, आंखों का स्पर्श होना, कानों का स्पर्श होना ध्वनि से, यही संस्पर्श जाप होगा दुख योनय एवते, अंत में दुख ही आता है। क्यों? क्योंकि ये भाव, ये जगत ही ऐसा है और इसमें होने वाली हर चीज ऐसी है, आद्यंतवंत, आदि है और अंत है उसका। इस जगत में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसका आदि नहीं है और जिसका अंत नहीं है। तो आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा, बुद्धिमान लोग उसमें रमण नहीं करते, आनंद नहीं लेते। तो भगवान ये बात बताते कि ये देखकर हम भौतिक इच्छाओं को त्याग सकते हैं, कि क्या फायदा ऐसी चीजों को पकड़कर जो बाद में समाप्त होने ही वाली है, दुख देने वाली है। भगवान तुलना करते हैं भौतिक इंद्रिय तृप्ति की, उसकी तुलना करते हैं एक स्वप्न से। सो कहते हैं कि स्वप्न में व्यक्ति सोता रहता है और सोने का अर्थ क्या है? अज्ञान में है निद्रा में है और वो कुछ स्वप्न देखता है। इस जगत में भी हम सब सो रहे हैं, ऑफकोर्स भागवतम में तो सो ही रहे हैं, लेकिन वैसे भी सो रहे हैं। तो कैसे सो रहे हैं? आध्यात्मिक जीवन के प्रति हमने आंख बंद कर रखी, हम सो रहे हैं। इसलिए भगवद गीता में भगवान ने क्या कहा, या निशा सर्वभूतानाम, जो सबके लिए रात्रि है, तस्याम जागृति संयमी, उसके लिए वो दिन है, वो सोता नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम लोग रात को 10 बजे से उठकर कुछ करना शुरू कर दें, ये अर्थ नहीं है। उसका अर्थ है कि जब दुनिया आध्यात्मिक जीवन के प्रति सोती रहती है, या निशा सर्व जिन लोगों के लिए है, उस समय जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो आत्म साक्षात्कार के प्रति जागृत रहता है। तो ये बात है, आंखें खोल कर बैठना चाहिए। सुस्यस्याम, तो सोना नहीं है। तो भगवान कह रहे हैं कि स्वप्न में, तो जब हम लोग आध्यात्मिक जीवन के प्रति सो जाते हैं तो क्या स्वप्न आता है? जैसे हम जब सो गए हैं तो हमें कोई सपना आता है कि मैं राजा बन गया हूं, मैं बहुत कुछ हो गया। ऐसे जब आध्यात्मिक जीवन के प्रति सोए होते हैं तो जो भोग की कामना है ये स्वप्न के समान है, क्योंकि सोए हुए हैं, जागृति नहीं, हमें पता ही नहीं है कि असली चीज क्या है। तो फिर जो भी है वो स्वप्न के समान है। फिर हम देखते हैं कि मेरा जन्म हो गया, मेरा ये परिवार हो गया, मेरा ये समाज हो गया, अब मेरा विवाह हो गया, ये एक स्वप्न के समान है। क्योंकि जब जागृत हो जाते हैं तब पता चलता है, जैसे यशोदा मैया, जब यशोदा मैया भगवान के मुख में देख रही थी, उनको ब्रह्मांड दिखाई दिए, वही ब्रह्मांड भगवान के मुख में, और उनको देखकर जो योग माया का आवरण था वो हट गया। और यशोदा मैया क्या सोचने लगी, यशोदा मैया सोचने लगी, मैं क्या सोच रही हूं, मैं क्या मानती हूं कि मैं यशोदा हूं, नंद महाराज मेरे पति हैं, कृष्ण मेरा पुत्र है, ये सब ठीक नहीं है, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं। विज्ञान आया उस समय उनको, यशोदा मैया को। लेकिन जब कृष्ण ने देखा रे गड़बड़ हो रही है सब, ये तो सारा लीला खराब हो जाएगी, तो उन्होंने फिर से ढक दिया उनको। और फिर से उन्होंने कहा नहीं नहीं नहीं, ये क्या मैं सोच रही थी, ये कृष्ण मेरा बच्चा है। तो जब आवरण हट जाता है तब ज्ञान आ जाता है, तब हमें लगता है ये सब क्या है, स्वप्न है। तो आज जिसको, जिसके पीछे हम भाग रहे हैं, वो ऐसे ही है, अंधे। जब रात को सो रहे हैं आपको पता नहीं है कि स्वप्न है, तो आप कैसे उसमें भागते हो? कई चीजें आपको दिखाई देती हैं, आप उसको प्राप्त करने के लिए, उसको लेने के लिए पीछे भागते हो। ऐसे ही ये जगत है, इसको जानकर व्यक्ति को भौतिक इच्छाओं को त्यागना चाहिए। और ये जान लेना चाहिए कि जब तक हमारी बुद्धि दूषित है, क्या दूषण है बुद्धि में, इस स्वप्न को सत्य मानने का, तब तक हमें जो भी प्राप्त होगा वो क्षणिक होगा। इसीलिए गुरु की शरण लेनी चाहिए जो हमें सत्य दिखलाए, ये स्वप्न से बाहर निकाले, उसे गुरु कहते हैं। तो फिर भगवान आगे वर्णन करते हैं कि व्यक्ति को कैसा गुरु लेना चाहिए, पूर्ण रूप से उसके चिंतन मुझ में होना चाहिए, मेरा स्मरण करे, कैसे हो एक प्रामाणिक गुरु को स्वीकार करे। गुरु कौन है? तो भगवान बताते हैं जिनको ज्ञान है, जो आध्यात्मिक रूप से बहुत आगे बढ़े हुए हैं, ऊंचे स्तर पर हैं। सो गुरु किसी को भी स्वीकार नहीं किया जा सकता। गुरु को बहुत सारे लक्षण शास्त्रों में दिए गए हैं, श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, जय श्री श्री गौ नटराज दयाल नेताय की जय। सो गुरु के यहां पर भगवान तीन लक्षण देते हैं, ज्ञान होना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए, और आध्यात्मिक स्तर से, आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर होना चाहिए। तो क्या ज्ञान होना चाहिए गुरु को? गुरु को भगवान का, आत्मा का, भगवान और आत्मा और भौतिक जगत और इन तीनों के बीच के संबंध का ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी कर लिया हमने, कोई बहुत बड़ी डिग्री ले ली। ये तीन चीजों का ज्ञान जरूरी है, भगवान का ज्ञान, कौन है भगवान, ये भौतिक जगत क्या है, और जीव क्या है, और इन तीनों के बीच संबंध क्या है, ये ज्ञान बहुत आवश्यक है। तो गुरु को ये ज्ञान होना चाहिए कि ये और उन तक पहुंचने का मार्ग क्या है, भगवान तक। दूसरा, गुरु को शांत होना चाहिए। शांत मतलब ऐसे नहीं कि शांत रहे, शांत मतलब इंद्रियां पूर्ण रूप से वश में होनी चाहिए, कोई उत्तेजना नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की भौतिक इच्छा नहीं होनी चाहिए। अगर गुरु के अंदर कोई भौतिक इच्छा है तो वो गुरु नहीं हो सकता, क्योंकि वो भौतिक इच्छा के लिए कार्य करेगा। मन में इच्छा है, मैं बहुत प्रसिद्ध होना चाहता हूं, तो उसके सारे कार्य करेगा, भक्ति के कार्य, लेकिन सारे कार्य अपनी प्रसिद्धि के लिए होंगे, तो वो गुरु नहीं हो सकता। यह मान लीजिए कि उसकी इच्छा बहुत सारे मेरे शिष्य हो जाएं, वो गुरु नहीं हो सकता। तो गुरु कौन है? बहुत सरल है, शांत रहना चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं। हाँ, सेवा हेतु वो बहुत सारे शिष्यों को स्वीकार कर सकता है, सेवा हेतु वो बहुत सारे कार्य कर सकता है, मंदिर बनाना, प्रचार करना, सेवा हेतु करते हैं, लेकिन ये अपनी प्रसिद्धि के लिए नहीं। प्रभुपाद ने इतने ग्रंथ लिखे, कभी ये सोचा नहीं कि मेरा वो क्या बोलते पहला नंबर आ जाए वर्ल्ड में, मेरी बुक बड़ी फेमस हो जाए, कभी नहीं। बस प्रभुपाद ने भगवान की प्रसन्नता के लिए, हम सबको ज्ञान देने के लिए उसको लिखा। और तीसरे चीज, आध्यात्मिक स्तर पर बहुत, आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर होना चाहिए। अगर वो आध्यात्मिक स्तर पर ऊपर नहीं है, प्रभुपाद एक स्थान पर लिखते हैं कि गुरु जिस स्तर पर है उसी स्तर तक आपको ले जा सकता है, क्योंकि वो वहां तक है, वो खुद ही ऊपर नहीं जा सकता तो आपको क्या ले जाएगा। तो अगर आध्यात्मिक स्तर पर बहुत ऊंचा नहीं है गुरु, तो वो आपको, मान लीजिए कि गुरु कनिष्ठ अधिकारी है उदाहरण के लिए, तो आपको कनिष्ठ स्तर तक ले जाएगा, मध्यम है तो मध्यम तक, उत्तम है तो उत्तम स्तर तक। सो गुरु के लिए भी आध्यात्मिक रूप से बहुत ऊंचे स्तर पर होना बहुत आवश्यक है। अब गुरु के बारे में भगवान ने वर्णन किया, तो तुरंत शिष्य के लक्षणों को भी वर्णन कर रहे हैं। भगवान दोनों वर्णन करते हैं। भगवान ने जो भगवद गीता में वर्णन किया, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः, तत्वदर्शिनः, यही चीजें वहां वर्णन की। गुरु कौन है? तत्वदर्शी, ज्ञानी। और शिष्यों के भी लक्षण किए थे, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। तो अब विस्तार से शिष्यों के लक्षण को कह रहे हैं। सबसे पहला लक्षण वो कहते हैं कि उसे किसी प्रकार का अहंकार नहीं होना चाहिए। देखिए, जो लक्षण भगवान ने दिए हैं, खुद भगवान ने दिए हैं, कृष्ण ने, और इन लक्षणों को हमें प्रयास करना चाहिए अपने जीवन में उतारने का, अगर अच्छे शिष्य बनना है तो। तो पहला लक्षण देते हैं कि अहंकार नहीं होना चाहिए किसी भी तरह का, दंभ बिल्कुल नहीं, कह रहे मैंने ये कर लिया, मैंने वो कर लिया, मेरे कारण ये हो गया। कई बार होता है, लोग आकर कहते हैं प्रभु जी आपने, आपके कारण ये सब हो गया, और हम उसको स्वीकार भी कर लेते हैं, हाँ ये बात तो सही है, मैं नहीं होता तो ये सब नहीं होता। अहंकार, या शिष्य सोचे कि, कभी कभी शिष्य को ऐसा अहंकार हो जाता है कि मैं अपने गुरु से श्रेष्ठ हो गया हूँ, क्योंकि गुरु जी को इतना नहीं आता, मुझे बहुत आता है। महाप्रभु दिखलाते हैं कि गुरु के सामने कैसे रहना चाहिए। स्वयं भगवान होते हुए गुरु मोरे मूर्ख मानी, अपने को मूर्ख, मेरे को कह दिया और कहा ये करो, मैंने वो कर लिया बस। तो ये अहंकार है, जब हम सोचते हैं एक अच्छे शिष्य नहीं बन पाते हैं, जब हम सोचते हैं कि कुछ चीजें मैं कर रहा हूं, अपने आप को कर्ता मानना, ये अहंकार है कि मैं सब कर सकता हूं हमारे अंदर। तो फिर क्या हमें ऐसे सोचना चाहिए, अरे मैं एकदम बेकार हूं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये अच्छा भाव है? जब हम कह रहे हैं कि ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं कर सकता हूं, तो फिर हमें ये सोचना चाहिए कि मैं बेकार आदमी हूं, मुझे कुछ नहीं होगा, बैठा रहूं मैं एक जगह, कुछ नहीं करूं, ना प्रचार करने जाऊं, ना मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाऊं, ना मंदिर बनाने जाऊं, ना कुछ नहीं, क्योंकि मैं तो पतित जीव हूं। नहीं, ये दोनों गलत है। तो शिष्य का क्या भाव होना चाहिए? शिष्य को अपने आप को कर्ता नहीं मानना है, कि जो कुछ हो रहा है गुरु की कृपा से हो रहा है, जिस दिन वो कृपा हट गई आप कुछ नहीं कर पाओगे। अर्जुन धनुर्धर है, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर, कृपा हट गई, क्या हुआ? छोटे छोटे भील बालकों से हार गया। भगवान ये दिखा रहे थे कि जब तक उन्होंने शक्ति प्रदान की हुई है, अर्जुन बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता। ये भाव कभी भूलना नहीं चाहिए एक शिष्य को कि जब तक गुरु ने शक्ति प्रदान की हुई है, बहुत बड़े बड़े कार्य कर सकता हूं मैं। तो ये नहीं सोचना चाहिए कि निराश होकर बैठ जाए कि मैं कुछ नहीं, मैं कर सकता हूं। कब? जब गुरु की कृपा है तो होगा, क्यों नहीं होगा? मेरी क्षमता से नहीं होगा, मेरी कोई योग्यता नहीं है। जैसे प्रभुपाद लिखते हैं, भक्ति नाई वेद नाई नामे खूब दारो। मेरे अंदर न भक्ति है न ज्ञान है, भक्ति वेदांत नाम है मेरा, लेकिन आप मेरे नाम को सार्थक कर सकते हैं। सी भाव शिष्य का है, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, न मैं प्रचार कर सकता हूं, न मैं जप भी नहीं कर सकता। आपकी शक्ति है तो मैं रोज जप कर पाऊंगा, आपकी कृपा है तो मैं रोज भागवत श्रवण कर पाऊंगा, आपकी कृपा है तो मैं सेवा कर पाऊंगा, आपकी कृपा है तो मंदिर भी बनेगा, क्यों नहीं बनेगा। जैसे प्रभुपाद के पास जब शिष्य आते हैं तो प्रभुपाद क्या कहते थे, मेरे गुरु महाराज भेज रहे हैं आप सबको मेरी मदद करने के लिए। उन्होंने ये कभी नहीं कहा कि देखा पहले लोग आए नहीं कर पाए, मैंने इतना करके दिखा दिया, नहीं, गुरु की कृपा। सो अहंकार नहीं हो, दूसरा स्वार्थ नहीं हो, सेवा कर रहे हैं भगवान की, ये भक्ति कर रहे हैं, शिष्य हैं, शिष्य के अंदर स्वार्थ नहीं होना चाहिए। मतलब क्या मानना चाहिए उसको, मैं जो कर रहा हूं मेरे गुरु के लिए और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए, अपने लिए कुछ नहीं। फिर वो कुछ भी करे, लेकिन अगर गुरु और कृष्ण की कुछ भी करे, मतलब मर्डर नहीं कर दे किसी का जाके, हाँ अगर गुरु कृष्ण की प्रसन्नता के लिए मारना भी पड़े तो अर्जुन ने मारा, तो जो भी करेगा वो शुद्ध भक्ति होगी अगर गुरु और कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा है, अपने लिए नहीं। तो शिष्य का दूसरा लक्षण है, अहंकार नहीं हो, स्वार्थ नहीं हो। तीसरी चीज, बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की भावना ना हो कि ये सब मुझे मिल जाए। दरअसल आजकल जो आधुनिक समय है उसमें वैरागियों के पास गृहस्थों से ज्यादा सामान होता है, ऐसा हमें लगता है ना, जितना गृहस्थों को नहीं होता होगा उतना वैरागियों के पास होता है। सो ये जो इकट्ठा करने की भावना है ये शिष्य को नहीं होनी चाहिए, वैरागी हो या गृहस्थ हो, बहुत ज्यादा नहीं, जितना आवश्यक है समाज में ठीक है उतना रखें, लेकिन नहीं है जितना जरूरी है उतना रखना है। बहुत ज्यादा इकट्ठा करने की भावना, भरे जा रहे हैं ये सब करे जा रहे हैं, ये भी होना चाहिए वो भी होना चाहिए, इकट्ठा करने की भावना से दूर शिष्य को रहना चाहिए। फिर भगवान आगे कहते हैं, आलसी नहीं होना चाहिए शिष्य को कभी आलसी नहीं होना चाहिए, हमेशा एक्टिव रहना चाहिए ना? अभी नहीं करेंगे, अभी नींद आ रही है, अभी बाद में, अभी थोड़ा इच्छा नहीं है, ये शिष्य नहीं है। एक्टिव, कहा जाए तुरंत तैयार। जैसे आर्मी होती है तो जो सेना होती है, सेना में आलस नहीं दिखाया जा सकता। आप युद्ध कर रहे हो, सामने से गोलियां चल रही हैं, आप बंदूक उठा के थोड़ा देर आधा घंटा सो लेता हूँ, वो तो आधा घंटा पता चला कि आंख बंद हुई, उसके बाद कभी खुली ही नहीं फिर। तो इसी तरह हम लोग माया से युद्ध कर रहे हैं, माया से युद्ध करते समय आंख बंद नहीं की जा सकती, ढीलापन नहीं आ सकता, गोली मार देगी माया। तो इसलिए अलर्ट, एक्टिव रहना चाहिए। तो कभी आलस नहीं करें, इसका अर्थ ये नहीं कि हम कह रहे हैं कि सोना नहीं रात को, दिन भर रात भर सेवा करें, ऑफकोर्स कोई कर सके बहुत अच्छी बात है, लेकिन सोने का अर्थ भी क्या है, क्यों सोना है हमें दिन में, रात में जितना समय सो रहे हैं थोड़ा समय अपने शरीर को दिन के लिए तैयार करना कि पूरा दिन सेवा करनी है, इसलिए रात्रि में थोड़ा सा सोना बस। तो ये शिष्य के अंदर गुण भगवान कह रहे हैं, तो आलसी नहीं होना चाहिए। अगला गुण है, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए उसको गुरु में और कृष्ण में। शुद्ध भक्ति का एक लक्षण है कि हमें हमारे मार्ग पर और हमारे गंतव्य पर पूर्ण विश्वास है। जब रूप गोस्वामी परिभाषा देते हैं शुद्ध भक्ति की, अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। तो यही समझा रहे हैं कि हमें विश्वास है कि जो हमारा गंतव्य है कृष्ण परफेक्ट पूर्ण है, हमारा पथ भक्ति का पूर्ण है, कोई त्रुटि नहीं है, शुद्ध भक्ति। तो विश्वास बढ़ाना है, पूर्ण विश्वास गुरु पर, और केवल बोलने के लिए नहीं, पूरा समर्पण है महाराज आपको। अच्छा, महाराज ने कहा ये करो, नहीं ये तो ठीक से नहीं हो पाएगा, कुछ और बताइए। सो पूर्ण विश्वास कि जो गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक्या आर न करी हम अने आशा। इसको केवल गाना नहीं है, जब हम लोग रोज ये गुरु पूजा करते हैं तो उसका एक एक जो लाइन है उसको जीवन में उतारने का प्रयास करना है। रोज प्रार्थना ये करनी है प्रभुपाद से कि इसको मैं जीवन में उतार सकूं। जब हम गाते हैं गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते करिया एक्य आर न करी हम अने आशा, केवल गाइए नहीं, उसको प्रभुपाद से प्रार्थना कीजिए कि मैं अपने जीवन में उतार सकूं। श्री गुरु चरणे रति, रति उत्पन्न हो उनके चरणों के प्रति। तो ये सारी चीजें हमें केवल गाना नहीं है, श्रद्धा बढ़ानी है। तो एक शिष्य कौन है? पूर्ण श्रद्धा। अगर गुरु में श्रद्धा नहीं है तो आप किस प्रकार के शिष्य हो? फिर जहां जहां श्रद्धा है वहां जाना चाहिए। जब गुरु में श्रद्धा नहीं है तो फिर किस प्रकार के शिष्य हैं? तो श्रद्धा होनी चाहिए। आगे वो बताते हैं कि धैर्य होना चाहिए शिष्य में। महाराज 4 साल हो गए दीक्षा होकर, अभी तक कुछ हो नहीं रहा है, धैर्य होगा। जब जब भगवान की इच्छा होगी तब होगा। मेरा कार्य है अपना कर्तव्य करना, कृष्ण का कार्य है, गुरु का कार्य है फल देना। हमें उनके उनके डिपार्टमेंट में जाकर डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, इंटरफेयर नहीं करना चाहिए कि अरे आपने अभी तक दिया नहीं, अभी तक दिया नहीं। 10 साल 15 साल 25 साल से भक्ति कर रहा हूं, आपने फल नहीं दिया। वो जब कृष्ण देंगे देंगे, आप अपना कर्तव्य कीजिए। धैर्य बनाए रखना चाहिए, बहुत आवश्यक है। अधीर व्यक्ति भक्ति तो क्या भौतिक चीजें भी ठीक से नहीं कर सकता, अगर वो अधीर है तो। धैर्य तो वहां भी चाहिए। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं कि एक स्त्री है, उसको संतान चाहिए, तो उसको धैर्य रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि बस विवाह हुआ अब कल का कल मुझे संतान चाहिए, धैर्य रखना। तो धैर्य रखते हैं तो धीरे धीरे आगे संतान उत्पन्न होती है, ये भक्ति है। तो जब हम लोग धैर्य बनाए रखते हैं तो भक्ति नाम की संतान उत्पन्न होती है। धैर्य छोड़ देते हैं तो फिर कुछ नहीं। सो ये भगवान कहते हैं। अगला वो कह रहे हैं, गुण दे रहे हैं, द्वेष नहीं करना चाहिए। भक्ति में आगे बढ़ने के लिए जो द्वेष है, ये जिससे हम द्वेष कर रहे हैं उसका नाश नहीं करता, जो व्यक्ति द्वेष कर रहा है उसका नाश हो जाता है। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज याद रखनी कि अगर हम हाथ में आग को पकड़ रहे हैं तो किसका नुकसान है? हाथ किसका जलेगा? हमारा जलेगा। हमने हाथ में पकड़ लिया आग को कि मैं छोड़ूंगा नहीं इसको, तो मत छोड़ो, आग हाथ जल जाएगा। इसी तरह हमने द्वेष को हृदय में बिठा लिया है, निकालूंगा नहीं इसको, क्या होगा? जल जाएगा। तो इसलिए द्वेष नहीं करना। और एक लक्षण शिष्य का बता रहे हैं भगवान कि उसकी जो वाणी है, जो वाचा है, वो बहुत नियंत्रित होनी चाहिए। क्या बोल रहा है ये उसको पता होना चाहिए, तो वाणी बहुत नियंत्रण होना चाहिए। ये तपस्या करनी चाहिए वाणी की। भगवद गीता में भी भगवान ने इसी बात को कहा, अनुद्वेग कर्म वाक्यम सत्यम प्रियम हितम च यत् स्वाध्याय अभ्यसनम चैव वांग्मयम तप उच्यते। तो भगवद्गीता में भी भगवान यही कहते हैं, वाणी कंट्रोल्ड होनी चाहिए, नियमित होनी चाहिए, नियंत्रित होनी चाहिए। बोलना है, इसीलिए सबसे पहले रूप गोस्वामी जब शुरू करते हैं उपदेशामृत, सबसे पहला कौन सा वेग है? वाचो वेगम। उसको नियंत्रित करिए सबसे पहले, वाचो वेगम, बोलना। और फिर भगवान अंततः कहते हैं कि उसे पूर्ण रूप से विरक्त भी होना चाहिए शिष्य को। जितना ज्यादा आसक्ति अन्य चीजों में है, उतनी आसक्ति गुरु और कृष्ण में नहीं हो सकती। जितना हम अन्य चीजों से विरक्त होते हैं उतना ज्यादा गुरु और कृष्ण के प्रति आसक्त होते हैं। तो इसीलिए विरक्त होना चाहिए। तो ऐसे शिष्यों के लक्षण कहने के बाद फिर भगवान आत्मा और शरीर के भेद को समझाते हैं कि अगर आप शिष्य बने हो, ज्ञान ले रहे हो, इच्छाओं से परे जाना है तो क्या समझना चाहिए, आत्मा और शरीर में भेद को समझना चाहिए। यही चीज उन्होंने अर्जुन को भी समझाई। दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक भगवान यही ज्ञान देते हैं। तो उद्धव को भी समझा रहे हैं अग्नि का उदाहरण देकर। वो कहते हैं कि अग्नि किसी वस्तु से जलती है, प्रकट होती है, लेकिन फिर भी अग्नि और वस्तु में भेद है। जैसे हम कहते हैं कि लकड़ी से अग्नि आती है, राइट, लकड़ी जला दो अग्नि प्रकट हो गई, तो क्या लकड़ी अग्नि है? लकड़ी अग्नि नहीं है, लकड़ी में अग्नि है, लकड़ी से वो प्रकट हो जाती है। इसी तरह अंतर देते हैं कि शरीर और आत्मा का। तो शरीर क्या है, मान लीजिए लकड़ी की तरह है, और अग्नि आत्मा है, प्रकट होती है लक्षणों से। तो इसलिए भेद बता रहे हैं कि आत्मा और शरीर में अंतर होता है, और यही ऐसा प्रतीत होता है कि आत्मा बहुत बड़ी है, आत्मा बहुत छोटी है। जब वो शरीर ले लेती है, हाथी का शरीर होता है तो लगता है बहुत बड़ी आत्मा है, चींटी का शरीर होता है तो लगता है बहुत छोटी आत्मा है। तो भगवान कहते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये तो केवल प्रतीत होता है, आत्मा आध्यात्मिक है। और जब तक व्यक्ति इस अज्ञान में रहता है, इस ज्ञान को नहीं जानता, तब तक कष्ट में रहता है। इसीलिए भगवान कहते हैं अज्ञान का नाश होना चाहिए, कैसे, विद्या के द्वारा। ज्ञान लेना बहुत आवश्यक है। और फिर भगवान कहते हैं ज्ञान कहां मिलेगा, तो एक बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। अभी अग्नि की बात की, अग्नि प्रकट होनी है, तो भगवान कहते हैं दो लकड़ियों को लिया जाता है और उसको घर्षण करते हैं और फिर प्रकट हो जाता है। जैसे माचिस भी होते हैं ना, तो घर्षण होता है तो फिर प्रकट हो जाती है अग्नि। तो इसी प्रकार वो कहते हैं कि ये विद्या कैसे आएगी, तो दो लकड़ियां चाहिए। क्या हैं दो लकड़ियां? एक गुरु और एक शिष्य, ये दो लकड़ियां हैं। और उनके बीच जब घर्षण होगा, घर्षण मतलब शिक्षा का आदान प्रदान, तो दो लकड़ियों में घर्षण होना है। तो एक है गुरु, एक है शिष्य। अब दोनों में घर्षण मतलब आदान प्रदान ज्ञान का, और तब अग्नि प्रकट होगी। और अग्नि क्या है? अग्नि है कृष्ण भावनामृत, भक्ति। ये सच्चा ज्ञान तब होगा जब शिक्षाओं को ग्रहण करेंगे। तो ये जो ज्ञान की अग्नि है, ये तब प्रकट होती है जब शिक्षाओं को, गुरु और शिष्य के माध्यम से शिक्षाओं का आदान प्रदान होता है। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि ऐसे हमें रहना चाहिए। तो ये उन्होंने मार्ग बताया कि इस जगत से परे जाने का क्या मार्ग है, उन्होंने उसको प्रकट किया। अब भगवान कहते हैं कि कुछ लोग मेरी बात पर विश्वास नहीं करते, तो अब वर्णन कर रहे हैं उन लोगों का जो कर्म को ही श्रेष्ठ मानते हैं, कर्म मीमांसा। तो कर्म का अर्थ क्या होता है? कार्य करना। मीमांसा का अर्थ क्या होता है? बहुत अच्छी तरह से उसको समझना। तो अब वो अगले अध्याय के अगले भाग में कर्म मीमांसा सिद्धांत का खंडन कर रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं कि सब अच्छा कर्म करो बस अच्छा होगा, बुरा करो बुरा होगा, यही सिद्धांत नहीं है, इसके परे भी कुछ है। तो ये जो कर्म मीमांसा है, ये छह दर्शनों में से एक दर्शन है, षट दर्शन। तो छह दर्शन है, जैसे गौतम ऋषि ने न्याय दिया, और वैशिषिका कानड़ ऋषि ने दिया, सांख्य कपिल मुनि ने दिया, योग पतंजलि ने दिया, कर्म मीमांसा जैमिनी ने दिया, और वेदांत व्यासदेव ने दिया। ये छह दर्शन हैं जो षट दर्शन के नाम से जाने जाते हैं। प्रभुपाद कहते हैं भागवतम के पहले स्कंद में, जहां वो योग्यता दे रहे हैं व्यासासन पर बैठने वाले व्यक्ति की, और कहते हैं उसको षट दर्शन पता होने चाहिए। तो ये छह दर्शन हैं। प्रमुखता इन छह दर्शनों में क्या वर्णन किया गया है? ब्रह्म क्या है, उनके स्वभाव क्या है, जीव का स्वभाव क्या है, ये भौतिक जगत क्या है और मोक्ष कैसे प्राप्त करना, ये उनका प्रमुख वर्णन है इन सारे षट दर्शनों में अलग अलग तरीके से, कोई कर्म के आधार पर, कोई योग के, कोई ज्ञान के इत्यादि, सब बात वही है। लेकिन ये सारे छह दर्शन ये आस्तिक नहीं माने जाते, मतलब भक्ति की दृष्टि से इनको नकार देना चाहिए और इसी को भगवान कर रहे हैं, खंडन कर रहे हैं इस अध्याय में। तो भगवान क्या कह रहे हैं, तो भगवान कह रहे हैं कि लोग चुनौती देते हैं मेरी शिक्षाओं को, स्वीकार नहीं करते हैं जो मैं कह रहा हूं। कौन लोग? जो कहते हैं बस अच्छा करो, भोग करते रहो, आनंद लेते रहो, कुछ नहीं होना इस जगत में, तो वे लोग आगे का जगत का स्वीकार नहीं करते हैं। तो भगवान उनका खंडन करना चाहते हैं। तो कहते हैं कि लोग ये कहते हैं, वे लोग ये कहते हैं कि आप कर्म करते रहो, आप शाश्वतता, शाश्वत रूप में आनंद प्राप्त करते रहोगे। तो भगवान कहते कहां से होगा? तो अब उनका खंडन करने के लिए कुछ चीजों को भगवान कह रहे हैं, तो उनको सार के रूप में सुनेंगे। पहली चीज भगवान कहते हैं कि जो कर्म कांड है वो व्यक्ति को दुखों से दूर नहीं कर सकता, मुक्त नहीं कर सकता दुखों से, कर्म कांड। ये पहली चीज कहते हैं। क्या है? कुछ कर लो ये प्राप्त हो जाएगा, कुछ कर लो वो प्राप्त हो जाएगा। कितने समय के लिए? दुख तो फिर भी बना रहेगा। दूसरी चीज भगवान कह रहे हैं, पहले उन्होंने कहा कि कर्म कांड से दुखों से मुक्ति नहीं होती, दूसरी चीज वो कह रहे हैं मृत्यु, ये तो निश्चित है, इसको कोई झुटला नहीं सकता, अटल है मृत्यु। तो जब मृत्यु अटल है तो मरना ही है, तो केवल अच्छे बुरे कर्म करके क्या होने वाला है? अंत में तो कष्ट होगा, दुख होगा ही। तो दूसरा चीज वो कहते हैं कि मृत्यु अटल है, आने ही वाली है, उसके लिए क्या तैयारी है? कर्म के द्वारा हम इस जगत में सुखी रहने की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन मरने के लिए क्या तैयारी हमारी? कोई तैयारी नहीं है, ये माया है। देखिए, हम सब जानते हैं कि मृत्यु अटल है, लोग कहते भी हैं मरना तो है ही एक दिन सबको, लेकिन आपने क्या तैयारी कर ली मरने के लिए वो बताइए, वो कोई नहीं चर्चा करता। अगर आपको मरना है तो तैयारी कीजिए, जैसे कहीं किसी को जाना होता है तो तैयारी करता है, बैग पैक करता है, सब करता है, जाना है। आपने कौन सी तैयारी कर ली मरने के लिए? तो क्यों नहीं की? क्योंकि हम इस सत्य को स्वीकार ही नहीं कर रहे कि हमें भी मृत्यु आने वाली है। कह देते हैं सबको मरना है, लेकिन वो कब आता है? जब बहुत बूढ़े हो जाते हैं व्यक्ति, तब उसको लगने लगता है, अब तो लगता है कि मैं मर जाऊंगा। लेकिन यंग अवस्था में, युवा अवस्था में कौन सोचता है बताइए? कोई है 20 साल की उम्र में अपना विल लिख देता है कि मेरे मरने के बाद ये होना चाहिए? आजकल तो लोगों ने, वो भी कलयुग का इतना प्रभाव हो गया कि लोगों ने वसीयत लिखना भी बंद कर दिया, कोई नहीं लिखता, बूढ़े भी नहीं लिखते। पहले होता था क्योंकि लोगों को ज्ञान था, आध्यात्मिक ज्ञान। आप देखिए, हम लोग सुनते कथाओं में, कई चीजों में लोग अपनी वसीयत लिखा करते थे, आजकल वो भी नहीं है। अचानक मर जाते हैं, फिर वो झगड़े होते हैं, उनके बच्चे आपस में, 80-80 साल के व्यक्ति ने भी अपनी विल नहीं बनाई है, वसीयत नहीं बनाई कि मेरे जाने के बाद क्या होगा। क्यों? उसको लगता ही नहीं है कि मैं जाऊंगा, अभी तो मैं हूं, कुछ नहीं होने वाला। तो भगवान कह रहे हैं कि वो तो अटल सत्य है, मृत्यु आने वाली है, तैयारी शुरू करो। और फिर वो कहते हैं कि इस जगत में तो, इस पृथ्वी पर तो सुख है ही नहीं, अगर स्वर्ग में भी चले जाओगे तो सुख नहीं है, क्योंकि लोग क्या मानते हैं, कर्म के द्वारा अच्छे कर्म करो स्वर्ग में पहुंचेंगे, वहां आनंद लेंगे, और वहां भी सुख नहीं है, वहां भी द्वेष है, वहां भी भय है। और देखिए, डरते रहते ना, असुरों ने आक्रमण कर दिया, देवताओं को भागना पड़ा, कई बार हमने सुना, तो स्वर्ग में क्या आनंद है, वो भी घबराए हुए रहते हैं। तो भगवान कहते हैं कि वहां भी आनंद नहीं है। और फिर जब स्वर्ग का वर्णन करा तो भगवान कहते हैं, अच्छा चलो मैं बताता हूं क्या होता है स्वर्ग में। तो भगवान कहते हैं, व्यक्ति बहुत बड़ा यज्ञ करता है, पूरा जीवन बड़ा यज्ञ दान इत्यादि करता है कि अगला जीवन, मृत्यु के बाद स्वर्ग में जाऊंगा, आनंद लूंगा। ठीक है, चला जाता है स्वर्ग में, थोड़ा बहुत आनंद लेता है कुछ समय तक, भगवान ने वर्णन किया कैसा आनंद लेता है। लेकिन उसके बाद क्या? भगवान कहते हैं कि जैसे ही पुण्य खत्म होते हैं व्यक्ति को उधर ही गिरना पड़ता है उसी समय। यही भगवत गीता में भगवान ने कहा है ना, क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति के तेतम भुक्तवा स्वर्ग लोकम विशालम, बहुत हो गया, बहुत समय अपने भोग कर ले, लेकिन क्षीणे पुण्य। तो यही बात यहां कह रहे हैं कि जब पुण्य होता है तो ये वर्णन किया गया है। मान लो आप स्वर्ग में हो, आप सेब खा रहे हो बड़ा अच्छा, आपने आधा खाया और आपका पुण्य समाप्त हो गया, वो बाकी आधा भी नहीं खा सकते आप ये भी नहीं कह सकते बाकी आधा तो खाने दो, पूरा तो नीचे जाके नहीं मिलेगा, वो आधा खाया उसी को छोड़कर नीचे गिरेंगे आप धाड़। या अप्सराओं के साथ आनंद ले रहे हो, कोई अच्छी अप्सरा देखी उसको गले लगाने जा रहे हो, बस आपके पुण्य समाप्त हो गए, वैसे ही दोनों हाथ ऐसे ही रहेंगे धाड़ नीचे। सो ये वर्णन है, और कैसे आते हैं ये भी वर्णन सारा किया गया है, कैसे नीचे आते हैं वर्षा से, बादलों से, वर्षा वर्षा से, फिर भूमि पर, भूमि से फिर अन्न में, इत्यादि, ये सब वर्णन है। तो स्वर्ग का भी भगवान वर्णन कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं है। तो स्वर्ग का वर्णन क्यों किया कि अच्छे अगर कर्म करते हो तो क्या होता है, ज्यादा से ज्यादा स्वर्ग चले जाओगे, वहां से भी वापस आना है। अब भगवान वर्णन कर रहे हैं बुरे कर्म करोगे तो क्या होगा। तो पहले भगवान ने अर्थ बताया कि क्या फल मिलने वाला है, अच्छे कर्म करके होना वही है, अब बुरे कर्म करके क्या होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो पापी व्यक्ति है, अधर्म में लगता है, किस लिए लगता है, वो कहते हैं या तो उसकी इंद्रिया वश में नहीं है उसलिए लग जाता है, साधारणतः हम लोग देखते हैं, या फिर उसका संग खराब है। तो या तो बुरे संग के कारण या अनियंत्रित इंद्रियों के कारण वो पाप में लगता है। फल क्या होता है उसका, उसका फल होता है कि बहुत सारी भौतिक इच्छाएं भर जाती हैं। जब हम बुरे संग में रहते हैं तो हृदय में भौतिक इच्छाएं बहुत भर जाती हैं, और भौतिक इच्छाएं आने से हृदय में क्या होता है, लोभ बढ़ जाता है, वासनाएं बढ़ जाती हैं, काम बढ़ जाता है, ये हमारे हृदय में भरा रहता है, और उसके कारण व्यक्ति क्या होता है, व्यक्ति हिंसक हो जाता है, हिंसा पे उतर आता है, या तो पशुओं को मारता है, प्रभुपाद कहते हैं स्लॉटर हाउसेस मेंटेन करते हैं सब लोग, तो या तो पशुओं को मारता है, हिंसा पे उतर आता है, या फिर बहुत सारे अवैध कार्य करता है, गलत कार्य करता है जो अनुमति नहीं है, और उसके कारण उसको फिर नरक में जाना पड़ता है, नरक की यातना भोग, भविष्य भी उसका अंधकारमय है क्योंकि किसी नीच योनि में जाना पड़ता है, और फिर उन सब से घूमकर वापस वो उसी स्थान पे आता है जहां पर था, मनुष्य योनि में। तो एक है अच्छे कार्यों का फल, यज्ञ जमीन पर है, पृथ्वी पर है, मनुष्य शरीर में है, यज्ञ किया, स्वर्ग गया, भोग किया, शीने पुण्य समाप्त हुए, वापस वहीं पृथ्वी पर। और जो बुरे कार्य हैं, पाप कर रहा है, इंद्रियां वश में नहीं है, हृदय में काम वासना क्रोध इत्यादि आ गया है, फिर उसके कारण गलत काम करता है, उसके कारण उसको नरक में जाना है, फिर निम्न योनियों में जाना है, और कई योनियों घूमने के बाद वापस आए। तो भगवान ये दोनों चक्र क्यों दे रहे हैं, कह रहे हैं फायदा क्या हुआ इतना सब मेहनत कर वहीं आ गए, बैक टू स्क्वायर वन, तो फायदा क्या हुआ। इसलिए भगवान कह रहे हैं इस जगत में पुण्य और पाप दोनों व्यर्थ है। इनका भी वर्णन भगवान ने भगवद गीता में किया है, कर्मणो ही अपि बोधव्यम, बोधव्यम च विकर्मणः, अकर्मणश्च बोधव्यम, गहना कर्मणो गति ही। कर्म की गति का वर्णन भगवान ने भगवद गीता में भी किया, तो उसको यहां पर वो कह रहे हैं। और फिर भगवान कहते हैं कि मुझे स्वीकार नहीं करते इसलिए देवता भी मुझसे भयभीत रहते हैं। काल के रूप में तो देवता भयभीत हैं भगवान से, डरे रहते हैं कहीं हमारा समय समाप्त ना हो जाए इत्यादि। जय श्री श्री गौनटराज दयाल निताय की जय। और फिर भगवान कहते हैं कि जीव भौतिक कार्यों में रहता है, भौतिक इच्छाएं करता है, कार्य करता है, और फिर अलग अलग उसको गतियां मिलती हैं, मान लीजिए अलग अलग शरीर मिलते हैं, और जब तक शरीर है तब तक वो कर्म पर आश्रित रहता है। जब तक शरीर है भगवान का आश्रय नहीं लेता है, क्यों, शरीर को चलाने के लिए कर्म करना ही पड़ता है, तो कर्म पर आश्रित रहता है, और उसी के कारण शोक और भय में सदैव रहता है। शरीर है, कर्म करना पड़ेगा, कर्म के कारण शोक और भय आएगा। ये हमारा पूरा संसार है। और भगवान कहते हैं कि ऐसे मोह में पड़े रहकर जो व्यक्ति होते हैं, फिर जब भगवान का वर्णन, मेरा वर्णन करना होता है तो मुझे कई तरीके से वर्णन कर देते हैं। वो कहते हैं कि वेद ही भगवान है, प्रकृति ही भगवान है, जीव भगवान है। भगवान खुद कह रहे हैं कि ये सारी चीजों को, वैदिक ज्ञान, ये ब्रह्मांड भगवान है, ये ऐसा वो वर्णन कर देते हैं मेरा। तो इस तरह से वो भ्रमित रहते हैं इस जगत में। मूल रूप में भगवान ने ये खंडन किया कि इस जगत में केवल कर्म करते रहो और सब कुछ अच्छा होगा, ये सही नहीं है। भक्ति करना अनिवार्य है। तो जब अब उद्धव ने ये सुना तो उद्धव के मन में प्रश्न आया कि आपने बताया कि जीव बद्ध रहता है, बंधा रहता है, कर्मों से बंधा है, गुणों से बंधा है, मुझे ये बताइए कि जीव तो शुद्ध है, वो बंध कैसे जाता है? आध्यात्मिक जीव है, वो तीन गुणों से कैसे बंध जाता है? ये पहला प्रश्न था उनका। दूसरा प्रश्न उद्धव का कि अच्छा, आपने ये भी कहा कि कोई मुक्त भी होते हैं, तो मैं पहचानूं कैसे मुक्त जीव कौन है, उसके क्या लक्षण है, कैसे पहचानूं? अर्जुन ने भी प्रश्न किया था। क्या प्रश्न था अर्जुन का? दूसरे अध्याय के 54 श्लोक में, 53 या 54 में, क्या श्लोक अध्याय था? उसका प्रश्न था स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, कैसे पहचानूं? तो यहां पर उद्धव कह रहे हैं कि मैं कैसे पहचानूंगा। और फिर उन्होंने कहा मुझे ये बताइए कि नित्य मुक्त और नित्य बद्ध, इनमें क्या अंतर होता है? तो ये प्रश्नों का उत्तर भगवान अब अगले अध्याय में देंगे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।